ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। 3 दिन का रायसीना डायलॉग कार्यक्रम 19 मार्च तक चलेगा। इस वर्ष इस कार्यक्रम की मुख्य विषय वस्तु कालचक्र, लोक शांति और पृथ्वी है। इस कार्यक्रम के दौरान विश्व के नीति निर्माता और चिंतक 6 मुख्य विषयों पर विचार मंथन करेंगे। इस बार रायसीना डायलॉग के लगभग 125 देशों के प्रतिनिधि हिस्सेदारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत शांति के बारे में जो भी बोलता है दुनिया उससे सुनती है, क्योंकि भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है। श्री मोदी ने एआई शोधकर्ता और पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत में कहा कि भारतीय सद्भाव में विश्वास करते हैं और शांति चाहते हैं। रूस और यूक्रेन संघर्ष पर श्री मोदी ने कहा कि इसका समाधान तब सामने आएगा जब दोनों देश बातचीत के लिए एक साथ आएंगे। भारत और चीन के संबंधों पर श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध नए नहीं हैं, बल्कि प्राचीन काल से सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्ते रहे हैं। पाकिस्तान से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा कि विभाजन के बाद पाकिस्तान ने सद्भावपूर्ण सह अस्तित्व का चयन नहीं किया। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत बेहतरी के लिए लगातार पाकिस्तान से सरकार पोषित आतंकवाद का रास्ता छोड़ने का अनुरोध करता रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पीएमआईएस के लिए एक समर्पित ऐप लॉन्च करेंगी। इसका उद्देश्य योजना के दूसरे दौर के लिए पंजीकरण को आसान बनाकर भागीदारी को बढ़ावा देना है। पंजीकरण 31 मार्च तक किया जा सकेगा। ऐप लॉन्च के साथ ही कोलकाता में पीएमआईएस को समर्पित एक सुविधा केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। ये केंद्र कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीए और भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। सर्वोच्च न्यायालय आज कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुनवाई करेगा। इस मामले में शीर्ष अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ इस मामले में सुनवाई शुरू करेगी। पिछली सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने देश भर के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया था कि वे उन डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों को दंडित न करें जिन्होंने इस जघन्य दुष्कर्म और हत्या मामले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था, लेकिन शीर्ष अदालत की अपील के बाद वे अपने काम पर लौट आए थे। इस बीच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस महीने कोलकाता की एक विशेष अदालत में अपना पूरक आरोप पत्र दाखिल कर सकती है, जिसमें साक्ष्यों से छेड़छाड़ के विभिन्न पहलुओं का विवरण दिए जाने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल असम के कोकराझार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बोडोलैंड क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कोकराझार जिले के डोटमा में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के 57वें वार्षिक सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बोडो समझौते की सभी धाराएं पूरी करेगी। इसके बाद गृहमंत्री ने 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में अमरीका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड के साथ बैठक की। सूत्रों के अनुसार बैठक में भारत अमरीका संबंधों के कई पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। खुद को प्रशांत क्षेत्र की संतान बताते हुए सुशी गबार्ड ने कहा था कि वो जापान, थाईलैंड और भारत जाएंगी तथा फ्रांस में कुछ समय के लिए रुकेंगी। ट्रंप प्रशासन के शीर्ष अधिकारी के रूप में ये गबार्ड की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है। कबड्डी विश्व कप 2025 आज से इंग्लैंड में शुरू हो रहा है। ये 4 शहरों बर्मिंघम, कोवेंट्री, वोसॉल और वॉल्वरहैम्पटन में आयोजित किया जाएगा। कबड्डी विश्व कप के पुरुष वर्ग में 10 टीमें भाग ले रही हैं। ग्रुप ए में हंगरी, इंग्लैंड, पोलैंड, जर्मनी और अमेरिका को रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में भारत, इटली, स्कॉटलैंड, वेल्स, हांगकांग और चीन शामिल हैं। राउंड रॉबिन मैचों के बाद प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 4 टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी। वहीं महिला वर्ग में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। ग्रुप डी में भारत, वेल्स और पोलैंड हैं, जबकि ग्रुप ई में हांगकांग, चीन, हंगरी और इंग्लैंड शामिल हैं। भारतीय महिला फुटबॉल लीग में कल शिवभूमि फुटबॉल क्लब ने सेतु फुटबॉल क्लब को 3-2 हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।